نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سلسلے میں ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے پیچھے ہم نے چھوڑا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا اظہار کیا، اسلام آیا، تو لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کیں کہ آپ کی مکی زندگی کا دوسرا دور چل رہا ہے، کہ جس وقت تبلیغ کھل کے ہوئی تو پھر مخالفت بھی کھل کے ہونے لگی، اور جو جہاں جتنا ستایا جا سکتا تھا اتنا ستایا گیا. افسوس اور دکھ سے کی بات یہ زیادہ تھی کہ ستانے والے اپنے تھے، اور دین کی یہ شان ہے کہ جب آپ سچا دین اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ستانے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں ہوتے، آپ کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی کو تو وہ شخص ستاتا تھا کہ جس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں صویبہ نام کی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، کہ جب اس نے خبر دی کہ تمہارے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا کہ تو اتنی اچھی خبر لے کے آئی ہے تو جا، میں نے تجھے آزاد کیا. لیکن وہی شخص جس نے محمد بن عبداللہ کی پیدائش کے موقع پہ لونڈی کو آزاد کروایا، جب وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ڈھلا تو کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور اسلام کی یہی شان ہے، آج بھی وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی ولادت کے خوشی میں جشن مناتے ہیں، تو خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی تھی، لیکن جب شریعت شروع ہوئی تو پھر اس کو غم لگا. آج اگر ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی ولادت کی خوشی منانے کی بجائے اس شریعت کی خوشی منانی چاہیے جو اقرا باسم ربک الذی خلق کے طور پہ ہمیں ملی تھی، جس سے نبوت ملی تھی. ابو لہب نے ظلم و ستم کی حد کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا، اپنے دو بیٹوں کو مجبور کیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دو، جذباتی مار دی. آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو اتنا خوش ہوا کہ اپنے دوستوں کے پاس خوشی خوشی آ کے کہتا ہے کہ مبارک ہو، نبی یعنی محمد جو ہیں یہ نسل کٹے ہوئے ہو گئے، نسل بریدہ، یعنی ان کی نسل اب آگے نہیں چلے گی. اور آپ کی تکذیب کے لیے بازاروں میں گھومتا اور حاجیوں کے پاس جا جا کے بتاتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور اتنے پتھر مارتا کہ آپ کی ایڑیوں سے خون نکل کے آپ کے جوتوں میں چپک جاتا. یہ آپ کا پیارا تھا، آپ کا چچا تھا. ذرا آپ اپنے کسی چچا یا ماموں کو سوچئے جن سے آپ کو بڑی محبت ہو. لیکن رشتے اس طرح بدل جاتے ہیں، جب حق آتا ہے نا زندگی میں تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں. اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، یہ تو لقب تھا، نام عروہ تھا یا عروہ تھا، حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی. اللہ کے نبی کی دشمنی میں یہ بھی کچھ کم نہ تھی، اس کے گلے میں ایک موٹا ہار تھا. لوگوں کو دکھا دکھا کے کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کے اس کا پیسہ اس نبی کی تکذیب پہ لگا دوں گی. اتنی نفرت کرتی تھی آپ سے، زبان کی تیز تھی، بد کلامی بھی کرتی تھی، فتنوں کی آگ بھڑکانے میں عام تھی. اور قرآن نے جو اس کو لقب دیا وہ حمالت الحطب کا دیا. حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی، حمل سے، اور حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو. عرب لوگ حمالت الحطب کہتے تھے چغل خور شخص کو، لکڑیوں کو اٹھا کے ادھر سے ادھر اٹھا کے پھر آگ لگائی جاتی ہے نا، تو چغلیاں کھانے والا شخص بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ادھر اور ادھر سے باتیں اٹھاتا ہے اور جا کے پھر لڑائی اور جھگڑے کی آگ لگواتا ہے. اس کو جب پتہ چلا کہ میرے شوہر کی حج میں قرآن پاک میں کوئی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، تو اللہ کے نبی کو ڈھونڈتی بھی آئی. اللہ کے نبی اس وقت مسجد نبی مکہ میں تھے، مسجد حرام میں، اور ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ عورت اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھا کے آئی، مٹھی میں پتھر بھرے ہوئے تھے، کہنے لگی کہ آج مجھے پتہ چلے یہ شخص کدھر ہے، میں اس کے یعنی اس کی طرف یہ پتھر پھینکوں گی، اور اللہ کے نبی کو اذیت دینا چاہتی تھی. جب وہاں پہنچی تو اس وقت کچھ شعر پڑھ رہی تھی. وہ شعر کیا تھے؟ کہتی ہے مزمن اسینا، वामरहु अबैना व दीनहु कलैना। हमने मुज़म्मम की नाफ़रमानी की, नऊज़ुबिल्लाह, मोहम्मद की बजाय आपको मुज़म्मम कह रही है। मुज़म्मम कहते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा मुज़म्मत की गई, मोहम्मद का अपोज़िट कह लें। इसके अमर को तस्लीम नहीं किया और इसके दीन को नफ़रत और हकारत से छोड़ दिया, यानी इससे आपको उसके दिल का बुग़्ज़ और इनाद दिखता होगा। इसके बाद वापस चली गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के नबी से कहा कि क्या इसने आपको देखा नहीं? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली, यानी आप उसको दिखे ही नहीं, और वहाँ से चली गई। और बास कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ से भी उसने पूछा था कि किधर हैं आपके नबी, या वो क्या तुम्हारे नबी ने मेरे शौहर की कोई हज की है? तो इन्होंने कहा नहीं, वो तो शायर नहीं है, यानी वो तो कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई थी। यानी ये थी वो हरकतें कि जिसका तذکرہ अल्लाह ताला कुरान पाक में भी करता है कि ये शख्स जो चचा भी था और पड़ोसी भी था, इसके बावजूद आपको इतनी तकलीफ़ें देता था। इसी तरह और भी कुछ लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दिया करते थे, और ये सब आपके अपने थे। जब आप नमाज़ पढ़ते तो बकरी की ओजरी या उसकी जो यूट्रस होती है आपके ऊपर फेंक देते, और चूंकि आपके हमसाए में से थे, इस तरह अपने घर की दीवार के ऊपर से बकरी की बच्चादानी, यानी जिसमें बच्चा पलता है, उसको फेंकते कि वो आपके चूल्हे के ऊपर आपकी हंडिया पर गिरती और आपकी हंडिया उलट कर गिर जाती। और अल्लाह के नबी ने उसके शर से बचने के लिए फिर एक छज्जा सा ऊपर बनवाया कि कम अज़ कम पकती हुई हंडिया के ऊपर ये कैफियत ना आए। मैं अपने आप से ही पूछूंगी, हमें इस्लाम के लिए कभी किसी ने इतना सताया? हम क्यों अपने ऊपर रहम खाते हैं? हम तो लोगों की सिर्फ माथे पे तेवरी बदलता देखे ना तो हमें गम लग जाता है कि अब तो बस, नो मोर, इससे ज़्यादा हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और एक वो भी मौका था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी फेंकी गई, आपने बाहर निकल के कहा कि ये कैसी हमसायगी है, यानी तुम कैसे हमसाए हो, तुम मेरे साथ ये मामला कर रहे हो। और एक मौके पे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे, तो अबू जहल और उसके कुछ दोस्त बैठे थे, तो आपस में शर्तें लगाने लगे, अच्छा तुम में से कोई है जो इसके ऊपर ऊँट की ओझड़ी डाल दे, जैसे खेल में तमाशा होता है ना, मजाक उड़ाने वाली कैफियत है। कहा अच्छा, उकबा बिन अबी मोईत उनमें था, उठा अपनी जगह से, कहा मैं करता हूँ। और जब अल्लाह के नबी सल्लम सजदे में गए तो इस शख्स ने आपकी कमर पे ऊँट की ओझड़ी रख दी, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो कितनी भारी और कितनी बड़ी होती है। और बाकी लोग इस काम को देख के हंसने लगे। अल्लाह के नबी सल्लम उसको अपने से हटा नहीं पा रहे थे कि मासूम छोटी सी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा आई और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने बाप की कमर से ओझड़ी उतरवाई। और उनका मासूम सा सवाल यही होता था कि अब्बा, ये आपको क्यों सताते हैं? आप तो इनको कुछ नहीं कहते, आप इनको क्यों सत ये आपको क्यों सताते हैं? अल्लाह के नबी सल्लम ने जब सजदे से सर उठाया तो आपने 3 बार ये बद्दुआ की कि अल्लाहुम्मा अलैक बि कुरैश, ए अल्लाह तू कुरैश को पकड़ ले, यानी बद्दुआ दी। कहते हैं कि अल्लाह के नबी की ये बद्दुआ सुन के उनके रंग उड़ गए, क्योंकि उनको पता था कि इस शहर में की हुई दुआएं कबूल होती हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर एक एक का नाम लेकर बद्दुआ की, अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, उतबा को पकड़ ले, शैबा को पकड़ ले, वलीद को पकड़ ले, और उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन अबी मोईत को पकड़ ले। और इब्ने मसूद कहते हैं, जो इस हदीस को रिवायत कहते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम अल्लाह के नबी ने गिन गिन कर लिए, ये सब के सब बदर के कुएं में मकतूल बनकर गिराए गए। यानी आपकी बद्दुआ लगी और ये उन 70 सरदारों में से थे जो पहली ही जंग में मार दिए गए। उमैया बिन खल्फ एक शख्स था, वो भी आपसे बहुत इनाद रखता था, अल्लाह के नबी को देखता तो लान तान करनी शुरू कर देता। इसी के बारे में फिर आयत नाजिल हुई थी कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा, कि हर लान तान करने वाले और बुराइयां बयान करने वाले के लिए तबाही है। इसी तरह एक मौका ऐसा भी था कि इन्होंने शर्त लगाई कि कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह के नबी सल्लम के मुंह पे जाके थूके, ज़रा महसूस करें, यानी उस दर्द को महसूस करें। हम कैसे आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हीरो बना के बैठते हैं, लेकिन हमें उस दीन की कितनी कदर है जिसके लिए आपने इतनी चोटें खाई। अब देखिए कि अल्लाह के नबी को क्या नहीं हासिल था उस सोसाइटी में। मोहब्बतें भी थीं, इज्जत भी थी, प्यार भी था, सादिक और अमीन का लकब भी था। बैठे रहते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, क्या करें, फिर हमसे बातें नहीं सुनी जाती। लेकिन वो लोग जो खुद परस्त होते हैं ना, फिर वो दीन का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते। या तो इंसान खुद को बातें करवा ले या फिर दीन को बातें करवा ले। किसी मौके पे अगर अल्लाह के नबी के कदम फिसल जाते ना, तो आज ये दीन हमारे पास इस शक्ल में ना आता। क्या क्या वाक्यात थे, आप पढ़ते हैं तो आपके सामने तारीख के ऐसे लगते हैं कि वरक के वरक उलटने लगते हैं कि वो नबी जिसको आज हम इतनी मोहब्बत से उनका नाम लें, लेकिन अपने इब्तदाई दिनों में कितना लोगों ने आपको हल्का जाना। आज अगर आपको अल्लाह के दीन पे अमल करने की वजह से लोग नापसंद करते हैं ना, जमे रहिए, ये सुन्नत है। हज़रत नूह को गाली मिली, हज़रत नूह को झिड़का गया, उनको डांटा गया, उनको दीवाना और मजनू कहा गया। सूरत कमर में जाके पढ़िए। और उससे बाद जो आया, जिसने हक की वो आवाज़ लगाई, उसको लोगों ने यही कहा, हत्ता के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आ गई। अहनस बिन शुरैक भी उन्हीं लोगों में से था जो अल्लाह के नबी को सताता था। इसके लिए कुरान पाक में एक आयत नाजिल हुई कि वला तुती कुल्ला खल्लाफ महीन हम्माज़ मच्छाइम बिन नमीम मन्नाइल खैर मोतदिन असीम उतुल्लिम बादा ज़ालिक ज़नीम। सूरत नून की आयतें हैं गालिबन, 29वें पारे की या दूसरी या तीसरी सूरत है। तुम बात ना मानो किसी कसम खाने वाले जलील की, जो लान तान करता है, चुगलियाँ खाता है, भलाई से रोकता है और हद दर्जा जालिम बद अमल और जफाकार भी है और बद असल भी है। ये शख्स वलदु जिना था, किसी को नहीं पता था। इसने अल्लाह के नबी की हज्व की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने का मुर्तकिब हुआ। कुरान पाक में इसका पोल खोल दिया गया कि ये बद असल है। इसी तरह अबू जहल, उसका भी यही हाल था। अल्लाह के नबी के पास आता, कुरान सुनता, लेकिन ईमान नहीं लाता था। तकलीफ़ देता, आपको परेशान करता। इसके बारे में आयत नाजिल हुई थी कि फला सद्दक वला सल्ला। अभी जो प्रेजेंटेशन देख रहे थे उसमें यही था कि वो शख्स जिसने ना सदका दिया ना नमाज पढ़ी, बल्कि झुटलाया और पीठ फेरी और अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ गया। इसने जब पहली बार अल्लाह के नबी को नमाज़ पढ़ते देखा तो रोका। इसने देखा कि अल्लाह के नबी मुकाम इब्राहिम के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। कहने लगा कि क्या ऐ मोहम्मद, क्या मैंने तुझे मना नहीं किया कि तू नमाज़ न पढ़? फिर धमकी भी दी। अल्लाह के नबी ने इसकी बात का जवाब ज़रा सख्ती से दिया तो कहने लगा कि मुझे क्यों धमकी देते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मक्का में सबसे बड़ी महफिल मेरी है? ये लोग अपनी महफिलों पे बड़ा मान करते थे, जैसे आज हम अपनी पार्टीज़ और अपनी गैदरिंग पे मान करते हैं। जो जितना बड़ा है उसकी दावत में उतने ही ज़्यादा लोग होंगे, और बाज़ दफ़ा सिर्फ इसलिए हज़ारों लोग बुलाते हैं शादियों पे कि पता चले कि शहर के किसी बड़े बंदे के घर में प्रोग्राम हुआ है। तो कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता मेरी पार्टी कितनी बड़ी है और मैं कितने असर रसूख वाला बंदा हूँ। इस पे अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी, फलयद उना दिया, किसको चाहिए कि बुलाए अपनी महफिल को, बुलाए अपने लोगों को, और पता चल जाएगा कि ये कौन है। एक मौके पे इसने अल्लाह के नबी का गिरेबान पकड़ लिया। महसूस करें ज़रा, एक बंदा शरीफ, अल्लाह के नबी का तसव्वुर करें तो जहन में कैसा प्यारा शख्स आता है। इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले में एंड पे आपके हुलिये पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन तसव्वुर में एक बड़ा हम्बल, एक आजिज़ मिजाज शख्स जो किसी को तकलीफ़ नहीं देता, और ऐसे शख्स को रात चलते कोई उसका गिरेबान पकड़ ले। क्या कहते क्या थे लोगों को, सिर्फ यही कहते थे ना कि अल्लाह को एक मानो, ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है, तुमने यहाँ से चले जाने कहीं और, यहाँ तुम चंद दिन के लिए हो। इस शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयतें उतारी थी कि औला लक फाउला तुम माउला लक फाउला, कि तेरे लिए ख़राबी है और तेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, यानी तेरे लिए यही बहुत लायक है क्या जहन्नुम, कि तू जहन्नुम में जाने के काबिल है। इसी तरह एक मौके पे अबू जहल ने दूसरे सरदारों के साथ शर्त लगाई कि मैं जूँ ही अल्लाह के नबी को देखूँगा तो बस देखना कि मैं उनकी तसलील करूँगा और लोगों को दिखाने के लिए गया अल्लाह के नबी सल्लम को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि अल्लाह के नबी के करीब पहुँचता तो बिल्कुल एक घबराए हुए अंदाज में पीछे पलटा। लोगों ने इसका हाल देखा, कहा तुम्हें क्या हुआ है? तो कहने लगा कि मैं जब उस शख्स के पास जाने वाला लगा था तो मैंने देखा कि बीच में एक आग की खंदक है और मैं इतना घबरा गया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने बाद में बताया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज्व उचक लेते, यानी अल्लाह ने नबी की हिफाजत की। इसी तरह एक और मौके पे भी जब ये अल्लाह के नबी सल्लम की गर्दन में रस्सी डालने के लिए आ रहा था तो घबरा के वापस पलटा और कहने लगा कि मैंने इतना बड़ा ऊंट देखा है कि जितना बड़ा कभी नहीं देखा, कि उसके दांत इस तरह खुले हुए थे और वो ऐसा था कि मुझे खा लेगा। और अल्लाह के नबी ने इस वाक़े पर जब तबसरा किया तो आपने फरमाया ये जिब्राइल थे, यानी अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। अब ये तो थे अल्लाह के नबी के साथ ज़ुल्म व सितम। हम सब अपने उन मजालिम को लिख लें जो आज हमारे ख्याल में हम पे हो रहे हैं अल्लाह के दीन पे अमल करने में, तो मुझे तो ऐसी लगेगा कि शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। अल्लाह ताला सच कहते हैं ना कि अभी तुम पे तो वो वक्त आया ही नहीं जो तुमसे पहलों पे आया था, उनको तो इतनी तकलीफ़ें दी गई। अहसिबन नास वन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, सूरह अनकबूत की पहली आयत है। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि वो छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ इस बात पे कि उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, और क्या उनकी आजमाइश ना की जाएगी? चंद लोगों के साथ जो मामलात होते थे वो आपके साथ शेयर करूंगी कि इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों को क्या कुछ तकलीफ़ें दी जाती थी। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो जब मुसलमान हुए तो इनका चचा इन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं छोड़ देता। आज ये नाम कितने प्यारे हैं, क्यों प्यारे हैं? कुर्बानियां दे के आए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो जब मुसलमान हुए इनकी माँ ने इनको घर से निकाल दिया, नाज़ो नेम में पले हुए थे, इतनी इनकी शान होती थी कि जब ये पहन ओढ़ के सज धज के अपने घोड़े पे सवार होके बाहर निकलते तो मक्का की जो लड़कियां और लड़के थे वो अपने घरों के दरवाज़ों से बाहर निकल के इनको देखते थे, आइडियलाइज करते थे। लेकिन इस्लाम ने मुसअब बिन उमैर का क्या हाल किया कि माँ ने जब घर से निकाला, कहते हैं कि इतने लाडले थे कि ज़रा गर्मी सर्दी तो देखी नहीं हुई थी, इनकी खाल जो थी ना इस तरह उधड़ गई जैसे सांप की कुचली जो है वो सांप जब छोड़ता है तो वो छाल उतरती है, इस तरह का इनका हाल हो गया था। कि एक मौके पे ये इस हाल से भी गुजरे थे कि इनके तन पे सिर्फ एक चादर थी और जिसको जोड़ने के लिए कांटे लगाए हुए थे, बटन भी नहीं थे। और अबू जहल जैसे लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो इनको, कहते हैं कल अल्लाह हमें जन्नतों का वारिस करेगा और आज कपड़े पे बटन भी नहीं है जोड़ने को। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुसअब बिन उमैर इस्लाम ने इनकी क्या हालत कर दी। इस्लाम कुर्बानी मांगता है और सबसे बड़ी कुर्बानी स्टेटस की कुर्बानी होती है। माल देना बहुत आसान है, जिसके पास माल बहुत है वो दे देगा, जहाँ सारा दिन चेक लिखते हैं एक चेक अल्लाह के नाम का भी लिख देंगे, क्या बड़ी बात है। वक्त लगाना भी आसान होता है, चलो फारिग बैठे हैं किसी मस्जिद में जाके वॉलंटियर कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को अल्लाह के रास्ते में आती है ना वो अपना स्टेटस बदलना आता है, ख़ानदान, बिरादरी, रस्म और रिवाज, तौर तरीके। अपनों की निगाहों में जब बंदा वहशत देखता है ना तो कहता है बस ख़त्म, आज के बाद नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकती। अगर ये लोग भी यही कुछ सोच लेते ना तो इस्लाम आज हमारे पास इतनी खूबसूरत शक्ल में ना होता। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे, उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता और वो मक्का के पहाड़ों में उनको कुत्तों की तरह घुमाते। अब तसव्वुर में लाए एक इंसान और उसके गले में रस्सी डली है और पत्थरों के ऊपर से उसको गुजारते थे कि उनकी गर्दन में जो रस्सी थी उसका निशान पड़ जाता, डंडों से मारता था उमैया इनको और चिलचिलाती हुई धूप में जबरन उनको बिठाता, खाना पीना छोड़ उनका ख़त्म कर देता, प्यासा रखता, और जब बहुत धूप होती तो मक्का के कंकर जो कंकरीले पत्थर होते हैं ना नोक वाले वो आपके सीने पे रखवाता। फिर कहता, खुदा की कसम तू इसी तरह पढ़ा रहेगा या तू मर जाएगा या फिर मोहम्मद के साथ कुफर कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल उस वक्त भी यही कहते, अहद अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और अहद किसको समझ आता है? जिसको तौहीद समझ आ चुकी होती है। हम जब इन लोगों की इन कुर्बानियों को सोचते हैं ना, तो हम कहते हैं इनको दर्द नहीं होती थी, चोट नहीं आती थी, आती थी, लेकिन अल्लाह की मार्फत बंदे को बेनियाज कर देती है। जिसको इस बात का यकीन हो जाता है ना कि वो मेरा मालिक है और उसके रास्ते में आजमाया जा रहा हूँ, तो फिर उसको गालियाँ खाने के बाद भी बदमज़गी नहीं महसूस होती। इसी तरह का एक दिन था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक करीब से गुज़रे, तो उनको रहम आया, तो उन्होंने फिर एक भारी रकम दे के हज़रत बिलाल को आज़ाद करवाया, और इस तरह हज़रत बिलाल की सारी ज़िंदगी की नेकियाँ अपने नाम लिखवा ली। हज़रत अम्मार बिन यासिर बनू मखज़ूम के ग़ुलाम थे, उनके माँ बाप ने और इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, मुसीबतें टूट गईं। अबू जहल इन पर ज़ुल्म करने में आम था, इनको पत्थरों पर लिटा देता। हज़रत सुमैया जो बीवी थी हज़रत यासिर की, उनकी शर्मगाह पे तीर लगाया और वो फौत हो गई। हज़रत यासिर को मार दिया गया और एक मौके पे हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया, इतना मजबूर किया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली नहीं दोगे या लात और उज्जा के बारे में खैर का कलमा नहीं कहोगे। कहते हैं कि इन्होंने अपनी इन जान बचाने के लिए उनकी बात मान ली, इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद रोते हुए अल्लाह के नबी के पास आए और माजरत की, अल्लाह के नबी मैंने क्या किया, अपनी जान बचा दी और उनकी बात मान ली। तो उस पे फिर आयत नाजिल हुई थी कि मन कफ़र बिल्लाहि मिन बाद ईमानी ही इल्ला मन उक्रिहा व कल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कि मगर जो ईमान लाने के बाद कुफर करे उस पर अल्लाह का गज़ब और अजाब अजीम है, लेकिन जिसे मजबूर किया जाए उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो तो उसकी पकड़ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दिलों को जानते हैं ना, लेकिन छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ये इंसान के ईमान का तकाजा नहीं है। इसी तरह एक सहाबी थे फुकैहा, इनका नाम अफलख था, बनी अब्दुद्दार के ग़ुलाम थे। इनका मालिक इनके पांव रस्सी से बांध कर इन्हें ज़मीन पर घसीटता था। हज़रत खबाब बिन अरद कबीला खुजाया की एक औरत उम्मे अनमार के ग़ुलाम थे। इनको इतनी सज़ाएं मिलती कि इनके सर के बाल नोचते और सख्ती से इनकी गर्दन मरोड़ते और इनको कई बार दहकते हुए अंगारों पर लिटाकर ऊपर से पत्थर रख देते कि वो उठ ना सकें। आप देख रहे हैं कि जुल्म और सितम हो रहा था तो ग़ुलामों के साथ हो रहा था। छोटे लोगों पे हाथ डालना आसान होता है ना। दो औरतें थीं, जुनैरा और नहदिया और उम्मे उबैस, ये लौंडियाँ थीं। इस्लाम कबूल किया तो इनके साथ जो मामला हुआ कि इनकी बिनाई तक चली गई, अंधी हो गई थी ये लोगों के जुल्म और सितम को सहते हुए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इनको भी आज़ाद करवा दिया था। और आपको पता है कि एक तो इतनी तकलीफ़ दह सज़ा थी, जो शख्स मुसलमान हो जाता उसको गाय या ऊँट की कच्ची खाल लेके उसमें लपेट कर धूप में डाल देते, कितनी कराहत आती होगी। इसी तरह बाज़ लोगों को लोहे की ज़िरहें पहना कर पत्थरों पर लिटा देते। बड़ी लंबी कहानी थी, लेकिन अल्लाह ताला देखना चाहता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कल भी देखता था, वो आज भी देखता है। ये तो पता तब चलेगा जब हम वहाँ पहुँचेंगे, क्या खोया और क्या पाया। बहरहाल ये वो वक्त था कि जब मुसलमानों को सताया जा रहा था, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मुकाम की ज़रूरत थी कि जहाँ दर पर्दा छुप के हिकमत के साथ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं कि जिसकी वजह से मुसलमानों पे कम से कम टॉर्चर हो। तो उस मौके पे अल्लाह ताला ने जिस जगह को चुना था वो दारुल अरकम थी। एक सहाबी थे अरकम बिन अबी अल अरकम, कबीला महज़ूम से थे। इनका मकान जो था ये कोहे सफ़ा के पास था। इन्होंने अपना घर ऑफर कर दिया और इसलिए इस्लाम के नाम पे जो पहला इदारा मुसलमानों को मिला वो दारुल अरकम था। न जाने क्या नेकी होगी और क्या इखलास होगा उनका कि अल्लाह ने उनके घर को चुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त के लिए। इस तरह तकरीबन चौथा साल जो था वो शुरू हो चुका था, तकलीफ़ें सहते हुए इतनी शिद्दत बढ़ी कि कुछ लोगों के लिए तो वाकई मक्का में रहना धोबर हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भी और अल्लाह ताला की तरफ से इशारे मिलने की वजह से फिर कुछ लोग जो थे वो हबशा की तरफ हिजरत कर गए। अल्लाह ताला ने इन दिनों में सूरत अल काहफ नाजिल करवा दी। आप देखिए कि आज भी ऐसे ही है, उस दौर में तो कुरान पाक नाजिल होता था ना, आज भी आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जैसे हालात बनने होते हैं ना, अल्लाह ताला आपको वैसी निशानियाँ दिखाने लगता है। ये वो दौर था कि जब सूरत काहफ नाजिल हुई, और ये नाजिल भी मक्का वालों के मुतालबे पे ही हुई थी, यहूद के कहलाने पे, ज़रा पूछो ये नबी सच्चा है कि नहीं, अच्छा इनसे पूछो असहाबे काहफ कौन थे, अच्छा ज़ुलकरनैन कौन था, और ये रूह क्या होती है। इन्होंने आके अल्लाह के नबी से सवाल किए, उसके जवाब में कुछ दिन के बाद सूरत अल काहफ नाजिल हो गई, जिसमें तीन वाक़ियात ऐसे थे कि जिसने अल्लाह के नबी को और मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया। पहला वाक़िया असहाबुल काहफ का, कि जिससे बता दिया कि अल्लाह के नबी अब हिजरत करीब है। उन्होंने भी हिजरत करके एक गार में पना ली थी, और उसके कुछ अरसे के बाद अल्लाह के नबी ने भी हिजरत करके गारे सौर में पना ली थी। फिर इसी तरह ज़ुलकरनैन के और मूसा और खिज़र के वाक़े से एक पता चलता है कि कुछ चीज़ें जो बज़ाहर जो दिखती हैं वो वैसी नहीं होती। फिर ज़ुलकरनैन के वाक़े से पता चलता है कि ज़मीन अल्लाह की है और वो जिसको चाहे इसका वारिस बना दे, और कामयाबी उसी की है जो अल्लाह के दीन पे होगा। इस तरह ये खामोश इशारे थे कि अब मक्का से निकलो, और वो आयत भी नाजिल हो गई कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिल्लज़ीन अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, और जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छाई की उनके लिए अच्छाई है, और अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, सब्र करने वालों को इनका अजर बिला हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह के नबी को पता चला कि हबशा का जो बादशाह है उसका नाम था असहमा, अलिफ स्वाद हा मीम हा, असहमा नाम था, निजाशी लकब था, जैसे हर दौर का एक बादशाह का लकब होता है ना, आज के दौर में जैसे वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इस तरह निजाशी जो था वो लकब था, और उस दौर का जो शख्स था वो असहमा था। बहुत आदिल बादशाह था, मज़हब के नाते से ईसाई था। अल्लाह के नबी को पता चला कि उसका दिल नरम है, चुनाचे पहली मर्तबा रजब सन 590 में सहाबा कराम के गिरोह ने हबशा हिजरत की, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं, और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाहु अन्हु उस ग्रुप के लीडर थे, यानी अमीर थे, और उनके साथ अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया भी थी जो आपकी बीवी थी। और इसी के लिए अल्लाह के नबी ने कहा था कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। लोगों ने घर छोड़े, हमें हमारे घर ही नहीं छोड़ते, वो घर छोड़ते थे और हमें हमारे घर ही नहीं छोड़ते। हमारी ऐसी कमिटमेंट्स है कि हम कहते हैं कि बस यही पूरी हो जाए तो बहुत है। रात को छुपते छुपाते निकले, डर था कि मक्का वालों को पता चल गया तो बहुत तकलीफ़ होगी, और इस तरह साहिल के रास्ते से समंदर पार किया जद्दा के नाते से, और वहाँ पहुँच गए। कुछ कश्तियाँ थी मौजूद जो तिजारत का सामान ले जाती थी, और जब ये लोग साहिल को छोड़ के समंदर के बीच में पहुँचे फिर मक्का वालों को पता चला, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। और फिर वो लोग वहाँ गए, कुछ अरसा बहुत सुख और चैन के साथ गुजरने लगा। इसी दौरान एक वाक़या हो गया, और वो वाक़या क्या था, रमज़ान मुबारक का महीना था, अल्लाह के नबी हरम में तशरीफ़ फरमा थे, मक्का वाले भी थे, ये ऐसे ही था जैसे हर बंदा अपने हिसाब से इबादत के लिए वहाँ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लम वहाँ जाके सूरत नजम की तिलावत कर रहे थे। अब आपकी ज़ुबान से सूरत नजम की तिलावत का सुनना था कि जो पास बैठे लोग थे वो मसहूर हो गए, यानी आपकी आवाज़ और आपके सोच में इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रही हम किधर हैं। अब हुआ क्या, हालांकि इसके बरक्स वो बहुत शोर करते थे, जब भी कहीं कुरान पढ़ा जाता था तो आवाज़ें लगाते, सीटियां बजाते, लेकिन उस मौके पे खामोश रहे। और उस सूरत के आखिर में आयत सजदा आती है कि फसजुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह के नबी ने वो आयत पढ़ी और सजदे में गए। इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला इन्होंने भी सजदा कर दिया। जूं ही इन्होंने सजदा किया तो एकदम शोर मच गया कि ये सारे मुसलमान हो गए। ये बात होते होते हबशा में मौजूद मुसलमानों के पास पहुंच गई। अब जब उनको पता चला रहे मक्का वाले मुसलमान हो गए, चलो भागो वापस, यही तो झगड़ा था, जब वो मुसलमान हुए तो फिर हम भी चलते हैं। जब ये वापस आए, जब पता चला कि खबर झूठी थी, और वो वापस आने वालों पे फिर जुल्म और सितम की एक हद झूठी थी कि बिलाखर फिर उनको दोबारा हबशा हिजरत करनी पड़ी। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद आया है, फिर दोबारा वो हबशा हिजरत की। अब जब दोबारा गए तो अब मक्का वालों ने ठाना कि इनके पीछे हम किसी को भेजें, और बादशाह जो है उनको इनके खिलाफ़ करते हैं ताकि वो इनको वहाँ रहने से रोक सके। इस दफ़ा जो लोग हिजरत करके गए वो तकरीबन 82 थे, 82। देखिए पहले 12 गए और अब 82 गए या 83 थे, जिनमें तकरीबन 18 या 19, यानी 18 और 19 औरतें थीं और बाकी जो थे मर्द थे। अब इस दफ़ा इन्होंने क्या किया कि दो लोगों को जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, बहुत समझदार थे, इस्लाम अभी नहीं आया था, मक्का वालों ने इनको भेजा कि जाओ खूब तोहफे तहाइफ दिए रिश्वत के तौर पे कि बादशाह को पेश करो उसके दरबारियों को, और उन्हें कहो कि ये लड़के जो यहाँ से हमारे लोग आ गए हैं इनको भेज दो। ये गए, अब निजाशी तक तो इनकी अप्रोच बाद में होती, उसके साथ वाला एक शख्स जो था उसको इन्होंने तोहफे दिए, बितरी मतलब कुछ इस तरह का उसका नाम आता है। बहरहाल केस जो था वो नजाशी के पास पहुंचा, वहां जाके इन्होंने कहानी बनाई कि ये हमारे नौजवान हैं, ये बेदीन हो गए हैं, इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और तुम्हारा दीन भी नहीं कबूल किया बल्कि एक नया ही दीन है, लिहाजा आप इनको हमें वापस करो, हम इनके माँ बाप और चचों और ख़ानदान वालों ने हमें आपके पास भेजा है तो हमें इनको चाहिए, हमें दे दो। निजाशी जो था वो बहुत समझदार बादशाह था, फ़ौरन इनकी बातों में नहीं आया, कहने लगा कि पहले मैं उनकी भी तो बात सुन लूँ। और यहाँ ये अमल की बात है कि कभी किसी की एक साइड से बात सुन के फ़ौरन उसकी तरफ चल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि दूसरी तरफ उसको साथ लेके जाना चाहिए। इसने कहा कि उसकी तरफ से कोई है तो मुसलमान जो इधर आए हुए हैं उनमें से किसी को भेजो। तो ये वो मौका था कि हज़रत जाफ़र बिन तैयार, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी की और बादशाह के पास आए। बच्चा ने कहा बताओ भी क्या करते थे, क्या हो तुम, ज़रा कुछ सुनाओ। यानी एक पर्सनल इंटरेस्ट लिया, अभी तक तो उसने कोई इस तरह की बात नहीं ली थी, लेकिन अब पूछा। तो इन्होंने फिर वहाँ कहा कि हम जाहिल थे, हम मुर्दार खाते थे, हम बुतों को पूछते थे, बदकारियाँ करते थे, रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते थे, हमसायों के साथ हमारे अच्छे मामले नहीं थे, ताकतवर जो था वो कमज़ोरों को दबाता था, फिर अल्लाह ने एक रसूल भेजा जिसकी तालीमात अच्छी हैं। यानी उसने सारी बात उन्होंने बताई खुलासे के तौर पर और कहा कि इस नबी ने हमें बताया कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करो, और सारे वो अच्छे एथिक्स हमें सिखाए जो लोगों के साथ रहने के भी होते हैं, और इसलिए अब हम ये काम करते हैं। पूरे दीन का एक खुलासा दे दिया। निजाशी ने जब ये सारी बातें सुनी और साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि जब हमने एक अल्लाह को मानना शुरू किया तो ये लोग हमसे नाराज़ हो गए, जुल्म करते थे, तो उससे बच के हम इधर आ गए। बादशाह जो था समझ गया, कहने लगा कि ये बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। कहने लगा ये बताओ कि जो पैगंबर तुम्हारे पास पैगाम लाए हैं वो क्या है, कुछ उसमें तुम्हारे पास है? हज़रत जाफ़र ने कहा है, कहा मुझे सुनाओ। उस पे फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत मरियम की इब्तदाई आयतें पढ़ी, और वो आवाज़ थी या वो लफ्ज़ों का असर था कि निजाशी इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई, और बल्कि इसके साथ जो लोग दरबारी थे, जो पादरी थे, वो इतना रोए कि उनके सहीफ़े तर हो गए। और इन्हीं का जिक्र कुरान पाक में 7वें पारे की पहली आयत में आता है कि वह इज़ा समीउ मा उन्ज़िला इला रसूल, और जब वो सुनते हैं उस चीज़ को, उस कलाम को जो रसूल की तरफ नाजिल हुआ, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें आंसुओं से रोती हैं। पहचान गया, कहने लगा भाग जाओ, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया से कहा चले जाओ, और बिल्कुल मैं इनको तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। अब ये घर आए, इन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये तो निजाशी हमारी बात ही नहीं मान रहा। फिर अगले दिन आए, कहने लगे बादशाह सलामत, हम आपको आज ऐसी बात बताने लगे कि इसके बाद तो आप इनको बिल्कुल यहाँ नहीं रहने देंगे। कहा भाई वो क्या है? कहा इनसे ज़रा पूछें हज़रत ईसा का क्या मामला है, क्योंकि एक्सप्लॉइट करना चाहना कि ईसाई तो उस वक़्त तक ख़ुद भी दीन के अंदर तब्दीलियाँ कर चुके थे। कहा बताओ ईसा का क्या मामला है। कहा अच्छा ठीक है, दोबारा बुलाया क्या हो। अब जब दोबारा आए तो अब ख़ास तौर पे ये इशू सामने आना था कि हज़रत ईसा के बारे में बताओ। ये वक्त वो मुसलमानों पे बड़ा बोझल था, क्योंकि सच बोलते हैं तो बादशाह नाराज़ होगा, और हकीकत में ईसाइयत से भी मुख्तलिफ दीन था। अब इस वक्त वो डामाडोल हो सकते थे। हम सब सोचें इन वक्तों में हम भी झूठे कागज़ भर देते हैं, हमारी भी डॉक्यूमेंटेशंस बदल जाती हैं, क्या करें फिर फितना ना हो। जब इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो आखिरी फैसला ये था कि जो होना है वो हो, लेकिन सच बोलेंगे, क्योंकि सच को आँच नहीं होती। कहा कि बताओ भाई ईसा के बारे में क्या कहते हो, तो हजरत जाफर जो थे उन्होंने फिर इसके बारे में वही कहानी सुना दी जो सूरह मरियम में आती है कि अल्लाह का कलिमा थे और बिन बाप के पैदा हुए। निजाशी ने जब उनकी बात सुनी तो ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहा कि जो बात तुमने ईसा के बारे में कही है और जो ईसा की हकीकत है उसमें इस तिनके के बराबर भी फ़र्क नहीं है, यानी यही ईसा का सही स्टेटस है। और इस बात पे फिर उसने कहा कि अब तुम यहीं रहो। कहते हैं कि निजाशी के मुंह से ये बात सुन के उसके दरबारियों में से भी कुछ लोग कहने लगे इसको क्या हो गया, लेकिन इन बातों से पता चलता है कि निजाशी मुसलमान हो गया था। इसने कहा कोई नहीं जाएगा और ये इनके सब तोहफे वापस कर दो, ये हमें खरीदना चाहते थे। इस तरह फिर हम वो दोनों जो लोग गए हुए थे वो बड़े जलील और रुसवा होके अपने तोहफों को वापस लेके वापस गए और मुसलमानों को वहाँ रहने का मज़ीद मौका मिला। कुछ अरसा वहाँ रहे और उसके बाद फिर जब हिजरत मुसलमानों ने मक्का मदीना की तो कुछ लोग फिर हबशा से ही हिजरत करके मदीना गए। बहरहाल ये वो वक्त था कि जिस वक्त मुसलमानों के लिए मुश्किलात थीं। अबू तालिब जो थे हज़रत नबी सल्लम की बैक पे थे, मक्का वालों ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी, कहा यह आपका भतीजा ना होता तो हम इसको पूछ के थे, और इस तरह की धमकियां जब दी। एक वक्त ऐसा आया कि इतना एक्सप्लॉयट किया कि हज़रत जो अबू तालिब थे उन्होंने भी आके अल्लाह के नबी सल्लम को कहा कि भतीजे ज़रा सोच लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपसे जंग करेंगे अगर आपने इनका साथ देना ना छोड़ा ना तो हम जंग करेंगे। अब ये वक्त फिर अल्लाह के नबी के लिए आजमाइश था, घर का बंदा और वही बंदा जो ख़ानदान में एक ही ऐसा है जो आपका साथ दे रहा है। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि चचा मुझे लगता है कि आप थक गए हैं मेरा साथ देते देते, आपको जो करना है आप छोड़ दें मुझे, लेकिन मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा कि लोग अगर मेरे एक हाथ में सूरज और एक में चांद रख दें और फिर भी मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि अल्लाह ने इस काम को पूरा करा के रहना है। जब अल्लाह के नबी का यकीन और पुख्तगी देखी तो फिर जो अबू तालिब थे उन्होंने कहा, रोने लगे, कहने लगे नहीं भतीजे तुमने जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और बड़े खूबसूरत अशआर भी इस वक्त आपके लिए पढ़े, तर्जमा उसका रख देती हूँ आपके सामने। बखुदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊँ। तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो, तुम पर कोई रोक टोक नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हों। अब इसके बाद फिर जब देखा कि अबू तालिब आपका साथ ही दे रहे हैं तो कुरैश वाले जो थे वो फिर एक और चाल चलते हैं, बड़ी भोंडी है वैसे, क्या क्या कि अपने शहर का सबसे खूबसूरत लड़का उसको लिया, अम्मारा उसका नाम था, उम्मारा आइन मीम अलिफ रा से, वलीद बिन मुगीरा जो उनका सरदार था उसका ये बेटा था, उस बच्चे को लेके अबू तालिब के पास आए। कहने लगे ए अबू तालिब ये जो यंग लड़का है टीनेजर, ये कुरैश का सबसे खूबसूरत और बांका नौजवान है, इसको आप ले लें, यानी इसके साथ जो मर्जी करें और इसके बदले में अपना भतीजा हमें दे दें। ज़रा देखिए, यानी उस दौर में रिवाज होता था कि मिसाल है कि ये बच्चा मेरा ना तो खुदा ना खास्ता अगर ये मर जाता है तो इसकी दियत कौन देगा, या कोई इसको मारता है तो उसकी दियत कौन वसूल करेगा। कहने लगे इस लड़के की दियत के इसकी हर चीज़ के आप मालिक हैं। तो अबू तालिब ने क्या बात की मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं खुदा की कसम कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो, तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं पिलाऊं पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो ताकि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम ये नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी को तो इसीलिए मांग रहे थे ना कि आपको फिर तकलीफ़ दें, तो लिहाजा अब उन्होंने उनकी ये पेशकश नहीं मानी। और फिर उसके बाद इन्होंने एक और साजिश की, और वो क्या कि अब एक ही काम करते हैं कि अल्लाह के नबी को कत्ल ही कर देते हैं। इसके लिए इन्होंने कोशिश शुरू की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की जो कोशिश की वो उतैबा ने की, अबू लहब का बेटा था, और हो सकता है कि किसी वक्त यही अल्लाह के नबी का दामाद भी था। ऐसे रिश्ते मुकाबले पे आ जाते हैं जब अल्लाह का दीन आता है, तकद्दस ही ख़त्म हो जाता है। इसने आके अल्लाह के नबी सल्लम को कहा कि मैं वन नजमी इज़ा हवा सुम्मा दना फतद अल्लाह का इनकार करता हूँ, सूरह नजम की आयतें पढ़ी, कहा मैं इसका कुफर करता हूँ, और आपका कुर्ता फाड़ा यानी आपको तकलीफ देने आपके चेहरे पर थूका, अल्लाह ने उसका थूक आप तक पहुंचने नहीं दिया, आपने बददुआ की कि अल्लाह तुझ पे अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे, यानी बददुआ दी दरिंदा तेरे ऊपर कोई मुसल्लत हो, और अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की ये दुआ कबूल की। यही शख्स उतैबा एक दफ़ा कुरैश के साथ एक सफ़र पे था, मुल्क शाम का एक मुकाम है ज़रका, जब वहाँ रात को पड़ाव डाला तो रात को देखा कि एक शेर जो है वो इनका चक्कर लगा रहा है। जूं ही उतैबा ने शेर को देखा, इसको अल्लाह के नबी की वो बददुआ याद आ गई। कल्ब का लफ्ज़ अरबी में आता है, वो कुत्ते के लिए भी आता है और दरिंदे के लिए भी आता है। अब इसने कहा कि भी मुझे तो खौफ आ रहा है, उस शख्स मुझे उसने बददुआ दी हुई है, ऐसा ना हो कि ये शेर मुझे पकड़े तो मेरी हिफाजत करो। लोगों ने इसके चारों तरफ बाड़ बनाई, यानी सब लोग इसके इर्द गिर्द अपने हथियारों के साथ थे, और ये बिल्कुल बीच में सोया कि नहीं तुम आराम से सो, क्योंकि बुलाब का बेटा था, बाइज्जत मुकाम था उसका, इसको कहा तुम सो जाओ। लेकिन रात के वक्त शेर आया, सबको फलांगता हुआ बीच में गया और अतैबा को पकड़ के उसको ज़िबह कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी किसी को बददुआ दे दें तो वो बच नहीं सकते थे। कहते हैं कि जूही इसने शेर को आता देखा था तो कहने लगा कि ए मोहम्मद, तू मक्का में है और तूने वहाँ रहते हुए मुझे मुल्क शाम में मार दिया। इसको भी यकीन था कि अब मैं मर जाऊँगा क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुझे बददुआ दी हुई है। और एक दिन उकबा में नबी मोईत ने अल्लाह के नबी की गर्दन पर सजदे की हालत में इस जोर से पाँव रखा या मरोड़ा कि अल्लाह के नबी की दोनों आंखें बाहर आने वाली हो गईं। अल्लाह अकबर। और एक मौका ऐसा भी आया कि मक्का वालों ने अल्लाह के नबी को सताने के लिए, मारने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो अबू बकर सिद्दीक सामने आ गए और उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को मारना शुरू कर दिया, बेहोश हो गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उन्होंने अबू बकर सिद्दीक के बालों को इतना खींचा नोचा कि जब बाद में आप होश में आए तो हम आपके बालों को पकड़ते तो पूरी की पूरी चोटियां जो थी वो हाथ में आने लगी। और अबू लहब, अबू बकर की ज़ुबान पे उस वक़्त एक ही बात थी, अतक्तुलूना रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, तुम एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह, और ये बेचारा कहता क्या तुम्हें, यही जुर्म है ना। हर दौर में लोगों को एक रब की दावत अच्छी नहीं लगती, जब बहुत सारों की बात करो तो लोग खुशी महसूस करते हैं। तो ये था वो तनाजर कि जिसमें अल्लाह के नबी ने इस दीन को पहुँचाया, और कोई एक या दो तीन दिन की बात नहीं थी, ये 4-5 साल हो गए थे इस तकलीफ़ को सहते हुए। अब वो वक्त आ रहा था कि इस्लाम को कुछ ऐसे हाथों की ज़रूरत थी कि जिसकी वजह से फिर लोग इस्लाम को उभारें। ये वो वक्त था कि जब हज़रत हमज़ा, अल्लाह के नबी सल्लम के चचा भी थे, आपके दूध शरीक भाई भी थे और आपके हम उम्र भी थे, दो माओं से हमज़ा ने और अल्लाह के नबी ने दूध पिया हुआ था, यानी ये हम उम्र थे। शुरू में याद होगा आपको मैंने बताया था कि जब बीवी आमना को रिश्ता पे भेजा अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का, तो साथ ही उनकी खालाजाद बहन को अपना रिश्ता भी भेजा, और उस दौर में ये बात मायूब नहीं थी, और ये दोनों शादियाँ करीब करीब हुईं। इधर अब्दुल्ला के घर अल्लाह के नबी पैदा हुए और उधर अब्दुल मुत्तलिब के घर पे में हमज़ा पैदा हुए, तो ये चचा भतीजा हम उम्र भी थे। एक मौके पे हुआ क्या, इनका इस्लाम लाना भी एक बड़ी अजीब कहानी है। यानी एक मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश की गई, और एक शख्स था उसने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दी और सर पर एक पत्थर मारा। दूर से एक लौंडी थी अब्दुल्ला बिन जुदान नाम के एक शख्स की, वो ये मंज़र देख रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लम को इसने मारा। वो वहाँ से भागती हुई गई, आगे से देखा तो हज़रत हमज़ा जो थे ये शिकार खेल के आए थे, और अब इनके हाथ में वो सारे टूल्स थे जिससे यानी किसी को मारा जाता है। उसने फ़ौरन ये बात सुना दी कि तुम्हें पता है तुम्हारे भतीजे के साथ क्या हुआ, वहाँ तो उनकी जान लेने की कैफियत हो रही है। जब इन्होंने सुना गुस्से में आए, फ़ौरन सीधा गए, अबू जहल सामने आया और उसको इन्होंने खूब ज़रा बुरा भला कहा और इस तरीके से बात की कि उसको पता चल गया कि ये मुझसे बदला लेने वाले हैं। तो इस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में इन्होंने जब उनसे खूब मामला किया तो उसके बाद फिर अल्लाह के नबी के पास आए, यानी दाद लेने के लिए, खुश होने के लिए कि देखा आज मैंने आपको डिफेंड किया। तो अल्लाह के नबी ने बड़े प्यारे लफ्ज़ बोले, आपने कहा कि हमज़ा आज तो तूने मेरी ज़ात का दिफा किया ना, मुझे तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन तू इस्लाम को कबूल करेगा। का अच्छा ये बात है, तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और हमज़ा मुसलमान हो गए। सिर्फ 3 दिन गुजरे कि फिर वो शख्स इस्लाम में आया कि जिसके इस्लाम में आने की वजह से तारीख का रुख बदल गया, और वो शख्स थे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। दो लोग इस्लाम की दुश्मनी में बड़े सख्त थे, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल, जिसका असल नाम अबू जहल नहीं था, ये तो उसकी कुनियत है। कभी इस कुनियत पे भी गौर किया करें, जाहिलों का बाप, यानी नाम से पता चलता है कि किरदार कैसा होगा। अल्लाह के नबी जब बहुत एक दिन दुखी थे लोगों की तरफ से, और हालात ऐसे थे कि जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा था, तो आपने दुआ के लिए हाथ खड़े किए और अल्लाह से एक दुआ की, क्या? अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम अबी अहब्बिर रजुलैन इलई का बी उमर इब्न अल खत्ताब औ बी अबी जहलम बिन हशाम। ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब और अबू जहल बिन हशाम में से जो शख्स तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है, इसके ज़रिए से इस्लाम को कुव्वत पहुँचा। ये दुआ कर दी कि अल्लाह अब इस्लाम को एक मज़बूत सहारा चाहिए। और इससे पता चलता है कि इंसानों के आने से फ़र्क पड़ता है। बाज़ दफ़ा एक शख्स जो है वो इस्लाम की तरफ आता है, और वो दूसरे कितने लोगों को दीन की तरफ ले आता है। और अल्लाह के नबी की एक रिवायत का खुलासा भी है कि मज़बूत मोमिन अल्लाह को कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा प्यारा है, वो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि खैर दोनों में। तो उमर फारूक जो थे, अल्लाह ताला ने इनको कैसे इस्लाम दिया, कहते हैं कि ये इनका थोड़ा सा किरदार देखे ना, सख्त मिजाज थे, अपनी तुंद खुई और अपनी सख्त खुई के लिए मशहूर थे, जैसे गुस्से वाले। औरतें डराया करती थी हज़रत उमर से अपने बच्चों को कि ये काम कर लो वरना उमर को बताऊंगी। आज भी लोग करते हैं ना कुछ ऐसे काम। और इतना ज़्यादा बाप दादा के नाम पे मर मिटने वाले थे कि सिर्फ तासुब की वजह से ही बहुत सारे काम करते थे। कहते हैं कि जब इन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फैलती जा रही है, इन्हीं दिनों में एक वाक़या हुआ, मैं तो उसको निशानी कहूँगी, कि जिसने उमर का दिल खोल दिया। और हुआ क्या कि कोई एक ऐसी वजह हुई कि एक रात हज़रत उमर को अपने घर से बाहर गुजारनी पड़ी। हो गई, हो सकता है बीवी से लड़ाई हो गई हो, हर ये तो बात मैं ऐसे ही कह रही हूँ, यानी कोई वजह थी कि ये घर में नहीं जा सके। मजबूरन उस वक़्त में यही होता था, जैसे आज भी किसी को कुछ ना जगह मिले तो मस्जिद तो खुली होती है, इनको हरम में रात गुजारनी पड़ी। अब जब ये वहाँ गए तो खाना काबा के पर्दे के पीछे छुप गए। अल्लाह का हुक्म देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम उस रात हरम में आके नमाज़ पढ़ रहे थे, और नमाज़ में आपने सूरत अल हाका की तिलावत शुरू कर दी। हज़रत उमर चुपके से अंदर बैठे कुरान सुन रहे हैं, और अब वो कुरान का जो हुसन था उससे इनका दिल जो था वो जमने लगा। कुफर पे थे लेकिन कलाम का असर होता है, और अरब थे उनको समझ आती है। अभी मैं आपको एक अच्छी सी तिलावत सुनाऊं तो समझ आए ना आए, लेकिन आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे, और जिनको समझ आती थी उनके तो दिल का हाल बहुत था। जो ही इन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सूरत अल हाका सुनी, कहने लगे ये शख्स शायर होगा, इसकी बात में इतना एक जैसे कहते हैं ना मिलोडी या रिदम है, ये शायर होगा। अभी ये सोच ही रहे थे ना, कहने के ये जो कुरैश आपको शायर कहते हैं ना, ये ठीक ही कहते हैं। तो इतने में अल्लाह के नबी ने ये आयत पढ़ दी, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिकौलि शायरिन कलील लम्मा तुमिनून। कहा कि ये तो एक बुज़ुर्ग रसूल का कॉल है, ये किसी शायर का कॉल नहीं, और तुम लोग थोड़ा ही मान लाते हो। अब हज़रत उमर को लगा ये तो मेरे दिल की चोरी पकड़ी गई, मैं तो अपने दिल में सोच रहा था कि ये शख्स शायर है, तो इसको तो पता चल गया। अच्छा हो ना हो भी ये काहिन है, काहिन उसको कहते थे जिसको दिल की बातें पता चलती थी। अभी ये सोच देन में थी, कितने में अल्लाह के नबी ने सूरत अल हाका की अगली आयतें पढ़ दी कि वला बी कौलिन काहिन कलीलम मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। कहा ये किसी काहिन का कॉल नहीं है, तुम लोग थोड़ी ही नसीहत हासिल करते हो, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। बस हजरत उमर कहते हैं इन आयतों से मेरे दिल में इस्लाम जागुजीन हो गया, इस्लाम वो जैसे कहते हैं ना दरारें पड़ गई थी। लेकिन वही बात है ना, इतनी जल्दी थोड़ी बंदा टूटता है, जाहिलियत फिर असबियत फिर बाप दादा की अजमत, तो छुपा हुआ था दीन। लेकिन इतने में भी एक दिन किसी ने इनको गुस्सा दिलाया, या गुस्से में तलवार पकड़ी, कहने लगे इस शख्स को जाके ख़त्म करता हूँ, इसकी वजह से घर घर बेचैनियाँ हो रही हैं। तलवार लेके जब निकले तो रास्ते में एक शख्स नोइम बिन अब्दुल्ला मिले। कहा उमर कहाँ का इरादा है भाई? कहा बस मैं जा रहा हूँ उस शख्स को कत्ल करने। कहा भाई क्यों? कहा इसकी वजह से बड़ी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। कहा अच्छा, तुम उनको कत्ल करोगे तो लोगों से कैसे बचोगे? इतने गुस्से में थे, कहने के लगता है तुम भी उसके दीन पे आ गए हो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं आया, तुम्हारी बहन आ गई है, ज़रा अपनी बहन और बहनोई का हाल तो पूछो, वो भी मुसलमान हो गए हैं। कहा अच्छा, चलो पहले उनका काम ख़त्म करता हूँ। अपनी बहन के घर गए, वहाँ गए भी बाहर ही थे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आई। खबाब बिन अरत सहाबी थे, वो एक सहीफे को पकड़ के सूरत तुआहा की आयतें थी वो पढ़ के सुना रहे थे। जूँ ही खबर मिली कि अंदर अब उमर आ रहे हैं तो वो तो छुप गए क्योंकि उमर से डरते बहुत है। अब जब इन्होंने अपनी बहन को देखा, कहते हैं जाके तो इन्होंने शोर कहा कि ये भी घर में आवाज़ें किस चीज़ की थी। कहते हैं कि अपनी बहन की तरफ बढ़े और बीच में बहनोई आए, इन्होंने उनको मारने की कोशिश की, यानी इन्होंने अपने बहनोई तक को खूब ज़रा उस मौके पे यानी मारा और इस तरह के किया कि उनको चोट लगी। तो बहन उनको बचाते हुए बीच में जब आई तो उनको भी चोट लगी और खून निकलने लगा बहन का। फिर वो खून देख के वो हज़रत उमर का दिल नरम हुआ, कहा ये भी तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा कि कुछ नहीं ऐसे ही था। कहा नहीं, मैंने खुद आवाज़ सुनी है, मुझे भी दिखाओ क्या है, ये दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। कहने लगे ऐसे नहीं दिखा सकती, पहले गुसल करो क्योंकि नापाक लोग इस कलाम को हाथ नहीं लगाते। हज़रत उमर ने गुसल किया और फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे तो बड़े पाकीज़ा नाम है, ये तो बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद सूरत तौहा पढ़ी, आप भी पढ़िएगा जाके। इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी वाकिमिस्सलात लिज़िक्री। ये वो कलाम था जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से किया था कि मूसा मैं अल्लाह हूँ। और इस तरह से जब बड़ी, कहने लगे तो बड़ा उम्दा कलाम है। जो ही देखा कि हज़रत उमर तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं तो हबाब बिन अरद जो छुपे बैठे थे वो बाहर आ गए। कहा आपको ये सुन अच्छा लगा, चले मैं आपको उस नबी तक ही ले जाऊं। कहने लगे मैंने कल ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे रात के दिन एक दुआ सुनी है और वो कह रहे थे कि अल्लाह या तो इस्लाम को अबू जहल के जरिए फतह दे दे यानी तकवीत दे दे, या उमर से। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे हक में अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हो गई है, चलो मेरे साथ। कहा किधर है? कहा वही कोहे सफ़ा में, दारुल अरकम में। कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तलवार अभी गले में और वहाँ पहुँचे, दूर से लोगों ने देखा, कहा अल्लाह के नबी उमर आ रहे हैं और हाथ में तलवार है। घबराने लगे, कहा नहीं आने दो, उमर आए नहीं है, ये बुलाए जा रहे हैं। फिर हज़रत उमर अंदर आए, सुभान अल्लाह, हज़रत हमज़ा जो थे वहाँ आपको मिले। कहा उमर कैसे आए हो, खैर का इरादा है या क्या इरादा है? कुछ लोगों ने कहा, हज़रत हमज़ा ने कहा अल्लाह के नबी मुझे इजाज़त है मैं उमर की तलवार से इनका सर कलम कर दूँ, क्योंकि लग रहा था दुश्मनी के इरादे से हैं। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं इनको छोड़ो। इतने में अल्लाह के नबी के ऊपर वही आई, यानी कैफियत तारी हो गई। आपको पता चल गया कि उमर का आना कोई आम आना नहीं है। आपने उनको बिठाया और आपने कहा कि उमर क्या तुम उस वक्त तक बास नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा ना नाजिल फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर हुई। या अल्लाह ये उमर बिन ख़त्ताब है, या अल्लाह इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए कुव्वत और इज़्ज़त अता फरमा। इसके बाद फिर आपके कहने पे उमर फारूक ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और उमर के इस्लाम कबूल करने पे सहाबे कराम ने इतने ज़ोर से तकबीर की कही कि मस्जिद हराम के अंदर जो लोग थे उनको भी आवाज़ आ गई। इतनी तकबीर आई, मुशरिकीन में तो कोहराम मच गया। चंद 3 दिन पहले सिर्फ हमज़ा मुसलमान हुए जो एक सरदार के बेटे थे, आज उमर मुसलमान हो रहे हैं। ये हो क्या रहा भाई, ये सब किधर जा रहे हैं, ये कौन किधर है? अब देखिए जब उमर भी मुसलमान हुए तो उस दौर के रिवाज के मुताबिक अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर ज़रा अपना ईमान छुपा के रखना, क्योंकि अभी अपने आप को फितनों में डालने का दौर नहीं था। तो उमर का क्यों, हक पे नहीं हम? अच्छा भी ठीक है। वहाँ खड़े होके कहते हैं मैंने सोचा सबसे ज़्यादा मेरे इस्लाम लाने का गम किसको होगा, क्योंकि हो ना हो ये अबू जहल होगा। सीधा उसके घर गए, कहते अपनी तलवार से खट 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 उनके दरवाजे को नॉक किया। जब उसने दरवाज़ा खोला, उमर क्या हाल है, कैसे आए, कहा क्या कहते हो? कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज एक उमर ही आ जाए ना तो उम्मत के हालात बदल जाए। आज कोई कुफर की आंखों में आंखें डालने वाला नहीं है, आज फिर यकीन करे कि इंसानियत को उमर की ज़रूरत है। सहाबे कराम कहते हैं कि इस्लाम बंद कमरों में था यहाँ तक कि उमर मुसलमान हुए। पहली दफ़ा काबा में खुल के लोगों ने नमाज़ पढ़ी, लोग घाटियों में नमाज़ पढ़ते थे इससे पहले, लेकिन उमर जब मुसलमान हुए तो लोगों को जुरत मिली। अबू जहल को ज़रा जुरत नहीं हुई, कुछ कह सटपटा के दरवाज़ा बंद किया और कहने लगा कि तेरा अल्लाह बुरा करे और उसका भी बुरा करे जो तू लेके आया, बददुआएं दी। अल्लाह अकबर। और उमर ने भी मारें खाई, मुसलमान उमर जैसे शख्स को मार पड़ती थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर उमर उसके बाद एक शख्स के पास आए, जमील बिन उमर। उमर ये किसी बात का ढंढोरा पीटने में मशहूर था। ये शख्स उसके पास गए कि जाओ सबको बता दो मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने शोर मचाया, लोगों खत्ताब का बेटा बेदीन हो गया। लोग हजरत उमर पर टूट पड़े, उनको मारा पीटा। लोग उमर को मार रहे थे और उमर लोगों को मार रहे थे, यहाँ तक कि सूरज सर पे आ गया और उमर थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे, उमर ने कहा जो बन पड़े कर लो, खुदा की कसम अगर 300 की तादाद में आज हम होते तो मक्का में या तुम रहते या हम रहते। आज उमर देखे ना कि मुसलमान 3 मिलियन से भी ज़्यादा है, और हो सकता है इससे भी कितने ज़्यादा हों। कहते थे सिर्फ 300 लोग होते ना तो हम तुम्हें मक्का से निकाल देते, और आज उम्मत ढेरों ढेर है मगर भीड़ है, कुछ भी नहीं। लोगों ने उमर के घर पे हमले किए, उन पे खौफ यानी उनको डालना चाहा, क्या कुछ ना हुआ लेकिन कोई पीछे ना हरा। और उस वक़्त फिर हज़रत उमर को फारूक का लकब मिला कि हक और बातिल अलग हो गया। कहते हैं कि उमर के मुसलमान होने के ऊपर काफिरों के दिलों पर ऐसी चोट पड़ी जो इससे पहले ना पड़ी थी, और अल्लाह के नबी ने इनका लकब फारूक रख दिया। इब्ने मसूद कहते हैं कि हम खाना काबा के पास नमाज पढ़ने पर कादिर न थे, यहाँ तक कि उमर ने इस्लाम कबूल किया। हजरत सुहैब कहते हैं कि हजरत उमर मुसलमान हुए तो इस्लाम पर्दे से बाहर आया, इसकी ऐलानिया दावत दी गई, और हम हलके बनाकर काबा के गिर्द बैठते और तवाफ करते। हजरत इब्ने मसूद कहते हैं कि उमर ने इस्लाम कबूल किया, तब से हम बराबर ताकतवर और बाइज्जत रहे। रदियल्लाहु अन्हुम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला कल आगे कंटिन्यू करेंगे।